अनंत राव्या के सामने हाथ जोड़कर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे खुद से दूर रहने के लिए ना बोले। वहीं अनंत की बात सुनकर राव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अब तो मैंने अपना फैसला सुना दिया है और यही होने वाला है। अब से नो टचिंग, ओनली वर्किंग। आप सिर्फ काम करेंगे, चाहे घर हो चाहे ऑफिस। और अब हम सीधा ऑफिस जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। अनंत ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मेरी माँ, अभी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम घर चलो, रेस्ट करो। राव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं रेस्ट कर लूंगी। ऑफिस में भी तो रेस्ट रूम है, मैं वहाँ रेस्ट कर लूंगी और शाम को घर चली जाऊंगी। मैं अब एकदम रेस्ट ही रेस्ट करूंगी, कोई काम नहीं करूंगी, सारा काम आप अकेले करेंगे। थक हार कर अनंत ने हाँ में सिर हिलाया। उसे इस बात की संतुष्टि थी कि कम से कम राव्या उस पर शक तो नहीं कर रही है, सिर्फ उससे काम ही करवा रही है। काम करने में उसे वैसे मौत तो बहुत आती है, पर खैर, अब गलती की है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। आखिरी बार अनंत ने राव्या के चेहरे को उम्मीद से देखते हुए कहा, देवी, क्या तुम्हारी सजा थोड़ी देर बाद शुरू हो सकती है? राव्या ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या मतलब थोड़ी देर बाद से शुरू हो सकती है? अभी कौन सा मैं आपसे काम करवा रही हूँ, ऑफिस जाओगे उसके बाद ही सजा शुरू होगी ना? अनंत ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, एक किस तो कर सकता हूँ ना, प्लीज मुझे 5 दिन तुम्हारे बिना रहना है, और अभी भी मैंने कितनी देर से तुम्हें छुआ नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर राव्या आंखें बड़ी करते हुए बोली, मैंने आप जैसा बेशर्म आदमी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अनंत ने उसके करीब बढ़ते हुए कहा, कैसे देखती यार, तुम्हारा पहला पति हूं ना, और ऐसी बेशर्म चीज सिर्फ एक पति करता है या फिर बॉयफ्रेंड करता है, लेकिन शायद तुम्हारा कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, इसीलिए तुमने लड़कों की बेशर्मी नहीं देखी है। इन सब बातों को साइड करो, प्लीज मुझे एक बार इजाजत दे दो ना, मुझे बस एक किस करना है, आई प्रॉमिस, उसके बाद 5 दिन तक जैसा तुम बोलोगी वैसा ही करूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर राव्या अफसोस में ना नहीं कह पाई और फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन बस एक। उसकी ये बात सुनते ही मानो अनंत को जन्नत मिल गई हो, वो खुश हो गया और फिर एकदम से राव्या की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल राव्या उसकी गोद में बैठ गई। उसे गाड़ी में एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ भी हो रही थी, इसीलिए उसने गुस्से में अनंत का कॉलर पकड़ते हुए कहा, आपकी वजह से मैं हमेशा मुसीबत में फंसती रहती हूँ, इस गाड़ी में आप कैसे मुझे किस करेंगे? ये सब कुछ ऑफिस में जाकर भी बोल सकते थे आप। अनंत को अब उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे बस उसके हिलते हुए होंठ दिखाई दे रहे थे। अगले ही पल उसने राव्या के चेहरे को अपने एक हाथ में भरा और दूसरा हाथ उसके बालों में उलझाते हुए उसका चेहरा बिल्कुल अपने करीब कर लिया। फिर उसने उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया, जिसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहद तड़प के साथ राव्या के होंठों को किस कर रहा था और साथ में हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था। उसके हाथ भी उसके काबू में नहीं थे, वो राव्या के शरीर पर इधर उधर घूम रहे थे, जिससे राव्या थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी, या यूं कहें कि वो भी बहक रही थी। उसे अब अनंत की आदत जो हो गई थी, वो भी अनंत को बैक किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ना चाहते हुए भी अनंत को उसके होंठ छोड़ने पड़े, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ, बल्कि अब उसके गाल पर किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके होंठ फिसलते हुए उसकी गर्दन पर आ गए। राव्या बस मुश्किल से अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी और उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो अनंत को रोक दे, लेकिन उसने अनंत को सजा तो दे दी थी, इसीलिए उसने मुश्किल से खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए अनंत के बाल पकड़कर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मिस्टर निमानी, आप भूल गए, हमारी डील सिर्फ एक किस तक की हुई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अनंत ने रोनी सूरत बनाकर उसकी आंखों में देखा, दोनों की आंखों में ही अजीब सा नशा छाया हुआ था। अगले ही पल राव्या में अनंत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब आप ऑफिस चलिए, मुझे लग रहा है शायद मुझे कुछ ज्यादा ही रेस्ट की जरूरत है, अब तो मुझे अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, कैसे मैं आपकी बाहों में आते ही बहकने लगती हूँ, ये सब कुछ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसका ऐसे सामने से कन्फेस करना अनंत को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। अगले ही पल उसने प्यार से राव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बीवी, तुम मेरे साथ साथ खुद को भी सजा दे रही हो, अगर कभी मेरे करीब आने का दिल करे तो खुद को रोक मत लेना, इतना रहम कर लेना खुद पर। राव्या ने कुछ नहीं कहा, वो बस गहरी सांस लेते हुए अनंत की करीबी को महसूस कर रही थी, जो उसके दिल को सुकून दे रही थी। थोड़ी देर बाद अनंत वापस राव्या को उसकी सीट पर आहिस्ता से बैठा देता है और उनकी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। वहीं निमानी हाउस में माधवी, जो चिप्स खा रही थी, अचानक उसके कमरे का दरवाजा लॉक हुआ और उसने जल्दी से अपनी चिप्स को वहीं बैठ के गद्दे के नीचे छुपाते हुए कहा, कौन आ गया मेरी पार्टी को बर्बाद करने के लिए? वैसे क्या रूहान अनाही के साथ चला गया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये सोचते सोचते दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि रूहान ही खड़ा था। रूहान का चेहरा काफी थका हुआ लग रहा था। वो अंदर आते ही माधवी के गले लगते हुए बोला, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, आपको क्या बताऊं ताई जी, मैडम जी तो दिन ब दिन मुझे और ज्यादा परेशान ही करती जा रही हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। माधवी मुस्कुराई और फिर रूहान के बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, करने को तो तुम क्या ही कर सकते हो बेटा, वो बीवी है तुम्हारी, तुम उस पर हाथ तो नहीं उठा सकते हो, लेकिन हाँ, अगर ज्यादा ही लिमिट क्रॉस करने लग जाए तो तुम उसे डाइवोर्स जरूर दे सकते हो। तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी, तुम्हें ऐसी एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी, खूबसूरत भी और टैलेंटेड भी, और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी आराम से अपने हिसाब से जी पाओगे, कोई भी तुम्हें ऑर्डर नहीं देगा, एकदम आजाद परिंदे की तरह रहोगे तुम। रूहान ने गहरी सांस भरकर अनाही का ख्याल करते हुए कहा, कभी कभी कुछ परिंदों को अपनी कैद बेहद पसंद होती है, वही उनका सुकून होते हैं जिन्हें वो कभी छोड़ना नहीं चाहते। माधवी को उसकी ये बात ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने रूहान को खुद से अलग करते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो कि अनाही तुम्हारे साथ रहे? रूहान ने ना में गर्कन हिलाते हुए कहा, नहीं, ये तो मैं हरगिज नहीं चाहता कि मैडम जी मेरे साथ रहें, लेकिन मुझे विहा के लिए बुरा लग रहा है। पहले उसका बच्चा चला गया था और अब अगर उसकी बहन भी उसे छोड़कर चली जाएगी तो वो पूरी तरह टूट जाएगी, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ, माधवी ने अपने मन में कहा। अब उसकी बहन के लिए क्यों प्यार उमड़ रहा है तुम्हारे मन में? फिर उसने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है पहले अपने बारे में सोचना सीखो, दुनिया वालों का क्या है, ऐसे तो दुनिया में लाखों लोग हैं जो आज मरने की कगार पर हैं, तो क्या तुम उन सबका ख्याल करोगे? नहीं, ख्याल सिर्फ उसका किया जाता है जो आपका बेहद करीबी हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, और विहा तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। फिर उसने अपने मन में कहा, भाई की बीवी के लिए तुम्हारे दिल में ऐसी हमदर्दी अच्छी नहीं है। रूहान ने गहरी सांस ली और फिर बेड की तरफ जाते हुए बोला, काश मेरे दिल में उन लोगों के लिए हमदर्दी आना बंद हो जाए जो मेरा बुरा चाहते हैं और सच में मेरे अपने नहीं हैं, बल्कि अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर मेरे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं। मैं जल्द से जल्द उनका चेहरा सबके सामने लाना चाहता हूँ। रूहान की बातें सुनकर माधवी का चेहरा डर से भर चुका था।
देखो, सफाई कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। 15-20 दिन से एक एग्जाम के लिए पढ़ रही थी। आज सुबह 5:30 उठकर वो एग्जाम देने के लिए रेडी हुई। दो पेपर थे, दोनों एक दिन शाम को आते आते 6 बज गए, और गर्मी का तो पूछो ही मत, आज कितनी ज्यादा थी। और गवर्नमेंट जॉब का कुछ अता पता भी नहीं रहा, मेहनत की है वो कोई काम आएगी या नहीं, सिर्फ स्ट्रेस ले सकते हैं और कुछ नहीं। फिर भी मैंने आज चैप्टर एडिट किया, हिम्मत देख रहे हो मेरी? अब गंदे कॉमेंट्स मत करना, मैं अब रेगुलर दूंगी एपिसोड। थैंक्स फॉर योर पेशेंस।